साक्षात परमात्मा है तो अपने को जो प्रिय लगे, अपने जिस स्वरूप में रुचि हो वही अपने लिए अधिक दामी है। इसी प्रकार से थी नाम के विषय में समझना चाहिए, जो भगवान के हजारों नाम हैं, तो भगवान विष्णु के जो नाम विष्णु सहस्र नाम, उनके बीच के मां शिव जो है, श्री कृष्ण जो है, श्री राम और श्री विष्णु, ये सभी नाम एक प्रकार से विष्णु सहस्र नाम में मिलते हैं, सभी नाम शिव सहस्र नाम में, सभी नाम गोपाल सहस्र नाम में मिलते हैं। इसलिए ये समझना चाहिए भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री शिव, ये सभी के नाम हैं। यदि आप शिव के उपासक हैं तो ओम नमो शिवाय ये आपके लिए बहुत उत्तम है, और नमो शिवाय ये भी उत्तम है। यदि शूद्र हो, असली हो, तो ओम का उच्चारण नहीं करके कि नमो शिवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं, और भगवान शिव के ही हरि नारायण वासुदेव ये शिव के नाम भी है। शिव के जहाँ सैकड़ों नाम आते हैं उनके वहां ये भी शामिल है। इसलिए मनुष्य किसी भी नाम का जप करें, अपने इष्ट देव का नाम समझ करके जप करना चाहिए, और भगवान के सभी नाम जो हैं, ये सभी नाम श्री विष्णु के भी, श्री के भी, श्री राम के भी, तो किसी स्वरूप का उपासक जो है वो इन सभी नामों का जप कर सकता है। इसलिए कोई आपत्ति की बात नहीं। किसी नाम का जप करने वाला पुरुष किसी स्वरूप की उपासना कर सकता है। राम नाम जो है ये केवल श्री रामचंद्र जी जो दशरथी जो राम भगवान दशरथ पुत्र जो राम है उन्हीं का नाम हो ऐसी बात नहीं, उनका तो है ही, किंतु विष्णु सहस्र नाम है भी रामो विरामो बीजो मार्गो नयो नयो नये, ये नाम वहाँ विष्णु सहस्र नाम भी, विष्णु का नाम भी आया है। और तुलसीकृत रामायण के बीच के माँ परशुराम जी भगवान राम से पूछते हैं कि राम रमापति कर धन ले चढ़े चाप भी ते संधे, रमा जो लक्ष्मी उसके पति जो विष्णु वे ही आप माने रमापति जो राम लक्ष्मीपति जो राम है वही दीदी आप हो तो इस धनुष को चढ़ाइए, ये मेरे जो संदेह दूर हो जाएगा। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि भगवान विष्णु का नाम राम है। अरे ये नहीं होता तो एक प्रकार से थी परशुराम जी आपत्ति क्यों करते कि राम तो मैं हूं, तुम राम कहां से? तो भगवान ने विनय के सहित कहा राम मात्र लघु नाम हमारा और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, मेरा तो खाली राम मात्र माने राम इतना है कि नाम मात्र है, और आपका नाम परशुराम है बड़ा नाम है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि विष्णु का नाम भी राम है, राम का नाम भी राम है, श्री रामचंद्र जी जो दशरथ पुत्र उनका नाम भी राम है। इसलिए कोई भाई भगवान विष्णु की उपासना करके भी राम नाम का जप कर सकता है, और श्री रामचंद्र जी की उपासना करके भी राम नाम का जप कर सकता है, और शिव की उपासना करके भी राम नाम का जप कर सकता है। कोई भी इसके वहां आपत्ति नहीं आती। क्यों? कि शिव का नाम भी राम है, और निराकार का उपासक भी राम नाम का जप कर सकता है, क्योंकि सब जगह के बीच के वहां जो रम है उसका नाम राम है, सब जगह के बीच के मां जो व्यापक हो उसका नाम जैसे विष्णु है, इसी प्रकार से सब जगह के मां जो रम है उसका नाम राम है। या योगी लोग जिसके आरम्भ कर उसका नाम राम है, तो योगी आपने समझो कि शिव में विष्णु में राम में समय रमण करते हैं। इसी प्रकार से वासुदेव का नाम सर्वजगह के माँ जो बास करे उसका नाम वासु है, सर्वजगह में जो बसे वही वासु और वही देव है, इस वास्ते वासुदेव नाम जो है तो भगवान विष्णु का ही है। और वसुदेव पुत्र वासुदेव ये भगवान कृष्ण का नाम भी इसी प्रकार से थी, ये वासुदेव नाम विष्णु का श्री कृष्ण का। और समझो कि राम का नाम भी और शिव का नाम भी, ऐसे सभी जो नाम हैं सभी के हैं। तो किसी भी नाम का जप कर करके अपने इष्ट देव की उपासना कर सकता है। और नहीं तो सीधी बात यह है, मंत्र जहाँ आते हैं विशेषता करके ये बात देखने आई, भगवान विष्णु की उपासना जहाँ नारद पुराण आई है वहाँ एक प्रकार से थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान विष्णु का मंत्र बतलाया गया। ओम नमो नारायणाय, ये भगवान विष्णु का मंत्र बतलाया गया। इसी प्रकार से और भी कई मंत्र बतलाए गए हैं, तो उनमें कोई भी एक प्रकार से मंत्र या नाम का आप जब कर सकते हैं भगवान विष्णु की उपासना कर सकते। तो किसी भी भाई बहन को ये मन में शंका नहीं करनी चाहिए, मुझको कौन से नाम का जप करना चाहिए, कौन से स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जो नाम आपको प्रिय लगे उसी नाम का जप करना चाहिए, जो आपको स्वरूप प्रिय लगे उस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, उसी की उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो ये एक प्रकार से इस विषय में कह दिया। दूसरा विषय क्या जाए, जय सीताराम 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 के विषय में सिद्धांत की बात बतलाई जाती है। बहुत से भाई पूछा करते हैं, गीता के ऊपर बहुत सी टीकाएं हैं, तो कौन सी टीका ठीक है। बहुत से आचार्यों ने गीता के ऊपर टीका लिखी है, भाष्य लिखे हैं, अनुवाद लिखे हैं, अपनी अपनी पद्धति के अनुसार उसका अनुवाद किया गया है। तो सबके सबसे बढ़कर के कौन सी अच्छी है, तो जितने जो टीकाकार जो हुए हैं अलग अलग आचार्य गण, सभी संप्रदाय के जो महानुभाव हैं, एक प्रकार से सभी की जो टीकाएं ठीक है। जैसे जो अद्वैतवाद को मानता है उनके लिए सबसे बढ़कर के स्वामी शंकराचार्य जी महाराज का जो भाष्य है वो बहुत ही उत्तम है। आचार्य महोदय जो रामानुज जी महाराज है, उनकी संप्रदाय को मानने वालों के लिए रामानुज का जो भाष है वो सबसे बढ़कर के है। इसी प्रकार से थी जो बल्लभ संप्रदाय के अनुयायी है उनके लिए समझो कि बल्लभाचार्य जी का जो भाष्य है वो उत्तम है। इसी प्रकार से थी आप को समझ लेना चाहिए। फर्क की जो बात है वो तो एक का से दूसरी का जमी आसमान का फर्क है। यदि ऐसी बात नहीं होती तो आज एक टीका नहीं सैकड़ी टीका क्यों होती। 900 कितनी टीका तो हमारे पास गोरखपुर के विषय में है, कोई चाहे तो वहां जाकर दर्शन कर सके। और संसार में कितने इसका पता, हिंदी में, संस्कृत में, मराठी भाषा में, गुजराती भाषा में, इंग्लिश में, फ्रांस में, अरबी भाषा में, कितनी भाषाओं के बीच में जिसका नाम भी आपको हम नहीं बता सकते। और फिर उनके माँ एक संस्कृत के माँ भी कितनी टीकाएं हैं, कोई एक नहीं। समझो कि शंकराचार्य जो हैं, न पिबांग जातु नासंग न तुम नेमे जनाधिपा न तय भविष्या में सर्वे वय मत परम। उन्होंने यहाँ जीवात्मा और परमात्मा की एकता सिद्ध करी और स्वामी रामानुज जी ने जीवात्मा और परमात्मा का भेद सिद्ध किया। येयं यत् तत्पर वक्ष्यामि जिज्ञात्वा मश्नोति अनादि मत परं ब्रह्म न सत्यं न असद्युच्यते। इस गीता की 13वीं अध्याय के 12 के श्लोक से लेकर के 17 के श्लोक तक जो ये ज्ञेय का विषय है, इसको स्वामी शंकराचार्य जी ने ये ब्रह्म का विषय है, परमात्मा का विषय है, ये बात बतलाई। और स्वामी रामानुजाचार्य जी ने कहा कि नहीं, ये जीवात्मा का विषय है। ये तो अक्षर मनिर्देश है, मैं व्यक्तं परिपाषते सर्वत्र गम चिंतन के कूटस्थम चलम ध्रुम। ये गीता की 12वीं अध्याय का 3रा श्लोक है। ये ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन है, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म का स्वरूप का प्रतिपादन है। स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं, रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि नहीं, जीवात्मा का विषय। इसी प्रकार से थी समझो कि एक से दूसरे श्लोक के ऊपर ऐसे ही मत भी, हरेक श्लोक के ऊपर बहुत ही समझो कि परस्पर में भेद है। ऐसे ही जो लोकमान्य तिलक की जो टीका है, गांधी जी की जो टीका है, उनकी जो दृष्टिकोण है वो गीता को समझो कि अधिकांश के बीच के वहां कर्मयोग में ही लगाते हैं कि गीता का आशय तो कर्मयोग की तरफ है। बल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी और आपने निमार्काचार्य और समझो कि रामानंद जी आदि जो वैष्णव हैं, ये इसको भक्ति के मई है सो कहते। और शंकराचार्य जी ने शंकर भाष ने और शंकरानंद जी टीका उसमें मधुसूदन जी टीका में ये अद्वैत के प्रतिपादन करने वाले जो हैं, इन्होंने यही इस बात को बतलाया कि गीता का तात्पर्य जो है सो अद्वैत के विषय में है। बहुत से श्लोकों के बीच के वहां इस प्रकार से जमी आसमान का फर्क है और मत फेर है। तो अभी ये बात है कि फिर सबसे बढ़कर के हम किसको माने, क्योंकि सबसे बढ़कर तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के जो वचन है मूल, उसको सब मानते हैं। तो मूल जो है वो ही वास्तव के मां मूल ही है, वो ही सबसे श्रेष्ठ है। यदि कहो कि मूल का ज्ञान नहीं है उनके लिए, उनके लिए तो यही बात कहनी बनती है कि टिकावा जो है एक दृष्टि से सब ठीक है और एक दृष्टि से थी कोई भी ठीक नहीं। श्रद्धा की दृष्टि से सब ठीक है, जिस आचार्य में जिस टीका कारक में जिनकी श्रद्धा है, विश्वास है, रुचि है, मानता है, उनके लिए वो सबसे बढ़कर। और जिनकी श्रद्धा नहीं है उनके लिए वो ठीक नहीं। कसौटी पर कस करके देखें तो उस दृष्टि से थी, किसी से भी किसी का मेल नहीं। अद्वैतवाद के जितने जो आचार्य हुए हैं ज्ञान मार्ग के, उनका भी परस्पर के बीच के मौसम जो कि भेद है, उनका भी कथन समान नहीं। शंकरानंदी टीका के मां जिस प्रकार से अधिकांश लोगों को अद्वैत में ही एक प्रकार से घटाया है, इस प्रकार से और दूसरे अद्वैतवादियों ने भी ऐसा नहीं घटाया, जैसे श्रीधर है, जैसे मधुसूदन जी है, वे भगवान के भक्त होने के नाते जो भक्ति के बहुत से श्लोकों को भक्ति पर जो श्लोकों को भक्ति के मई ऐसा कहता है। और हम उसे श्रद्धा को अलग रख करके केवल अपने तर्क से युक्तियों से जब विचार करते हैं तो गोलाकार के मां सब पुस्तक को रख दो और एक उठाओ तो एक, जो एक गीता की टीका जो कह रही है 99 टीका उसका विरोध कर, तो उसको छोड़ दूसरी पुस्तक उठाओ उसका भी ऐसा 99 टीका विरोध करती है। तो अधिक मत लेकर के उसे अपने समझो कि वोट लेकर के यदि सिद्ध किया जाए तो कोई भी सिद्ध नहीं होती, एक एक के विरुद्ध 99 खड़ी हो जाती है। तो इसलिए एक प्रकार से हम किसको तो अच्छा कहें और किसको बुरा कहें, तो सभी अच्छी है और सभी कोई भी अच्छी नहीं, कोई भी अच्छी नहीं। वो इस सिद्धांत से थी कि वोट का जमाना है, हम वोट लेकर के उसको सिद्ध करें तो एक के प्रति 10-20 के भी वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा टीका के बीच के मां एक के प्रति हू ज्यू का त्यों एक प्रकार से वोट मिलना संभव नहीं, तो फिर इतनी टिकाई क्यों हुए। तो इस सिद्धांत से तो समझो कि कोई भी यथार्थ नहीं ठहरती कि भगवान के वचनों के अनुसार ठीक ठीक किसी को नहीं बदला सकते। यदि कहो कि जो गीता प्रेस से जो टीका निकली है मुझे उसी की भी वही बात है, उसके लिए ये थोड़ा ही कहा जा सके कि एक प्रकार से वो जो है सबसे श्रेष्ठ है या वो ठीक है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। वो भी सबके शामिल ही है, उसमें किसी की श्रद्धा हो तो उनके लिए वो ठीक है, सबके लिए तो वो ठीक हो नहीं सके। तो यही बात एक प्रकार से युक्ति संगत है कि मूल सबके वास्ते एक, उसमें कोई फर्क नहीं। मूल को साथ से श्लोकों को सब कोई मानते हैं जितने टीकाकार हैं, और उसके अर्थ करने के मां भेद है। तो यदि पूछो कि हमारे लिए कौन सा अर्थ ठीक है, आप उनको पढ़ो जो गीता आपके मन को पकड़ ले, जो गीता आपके मन को एक प्रकार से आकर्षण करे, उस पढ़ने से आपकी प्रीति हो जावे, जिसमें श्रद्धा हो जावे, आपके लिए वही सुख, आपके लिए वही ठीक है। यही बात महापुरुषों के मां समझनी चाहिए। संसार के बीच के मां अधिकांश में तो जो महापुरुष के नाम से प्रसिद्ध जो अपने को, उनके बीच के मां महापुरुष वास्तव के बीच के मां बहुत ही कम मिल, क्योंकि कहने वाले तो बहुत हैं कि कोई तो कहता है कि मैं योगी राज हूं, कोई कहता है कि मैं अवतार हूं, कोई कहता है कि मैं महापुरुष हूं, कोई कहता है कि मैं ज्ञानी हूं, कोई कहता है कि मैं भक्त शिरोमणि हूं, कोई कछु अपने लिए बड़ी पदवी जोड़ करके के और विख्यात करता है। और उनके जो अनुयायी है वे तो एक प्रकार से और आगे बढ़ी हुई, वे तो समझो कि भगवान ही कहते उनको, ये भगवान ही है, साक्षात समझो कि नारायण है। किंतु ये समझना चाहिए कि जो उत्तम जो पुरुष होते हैं वे अपने मुख से अपनी कभी बड़ाई नहीं करते। लोग तो कह देते हैं किंतु वे खुद अपने आप को श्रेष्ठ नहीं बतलाते। तो ये समझना चाहिए कि जो अपने आप को श्रेष्ठ बतलाते उनमें सत्यम के मां महात्मा शायद से निकलता, और जो अपने आप को महात्मा नहीं मानते हैं या नहीं कहते हैं, नहीं प्रचार करते हैं, उनके बीच के मां कोई महात्मा मिलता है। क्योंकि महात्मा को क्या पड़ी, क्या लेना है कि अपने को महात्मा विख्यात करके और अपने लोगों को धोखे में। यदि संसार से रुपया ठगना हो या एक प्रकार से कंचन कामनी का लोभ हो या मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा हो या समझो कि अपने को पुजाने की इच्छा हो, तो वे एक प्रकार से अपने को ख्याति करते हैं कि मैं महापुरुष हूँ, मैं योगी हूँ, महात्मा हूँ, ज्ञानी हूँ, भगत हूँ। इनमें से किसी भी नाम का अपने में, स्वरूप का अपने में आरोप करके विख्यात करते हैं। तो वास्तु के बीच के मां हम महात्मा की पहचान कैसे करें, ऐसी परिस्थिति के बीच के मां, तो उनके लिए एक उपाय है। वह ये उपाय है कि गीता के बीच के मां, गीता की 12वें अध्याय में अधिष्ठात्र भूतानां मैत्र करुण एवच, यहाँ से लेकर के अध्याय की समाप्ति पर्यंत ये लक्षण गिर के मां घटे वो महात्मा पुरुष भगवान का सच्चा भक्त है, और सच्चा भक्त है वही महात्मा। या गीता की 6वें अध्याय के बीच के मां 7, 8 और 9 के श्लोक में जो लक्षण लिखे हैं, युते च्युच्यते योगी समलोष्टा समकांचना, तो वो सच्चा योगी है। ये लक्षण जिनके बीच के मां कहते हैं, ऐसे ही गीता की 14वें अध्याय के मां जो 22 के श्लोक से लेकर के 25 के श्लोक तक जो व्याख्या है, और ये लक्षण जिसमें घटे समझ लो कि वह गुणातीत पुरुष है, यानी जीवन मुक्त महात्मा ज्ञानी पुरुष है, ऐसा समझ लेना चाहिए। यदि कहो कि हमारी सामर्थ्य के बाहर की बात है कि हम तो इस प्रकार से किसी के हृदय की बात तो समझते नहीं, परीक्षा जो करने वाला परीक्षा तो उससे भी और ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। यदि कहीं बीए की परीक्षा लेनी हो तो एमए वाला ले सकता है, इंट्रेंस वाला नहीं ले सकता, इस वास्ते उस या उसके समान हो तो वो ले सके। हम लोग जो साधारण आदमी हैं वे कैसे परीक्षा करें। तो अब दूसरी बात आपको बतलाई जाती है, जो उस कोटि के जो महात्मा पुरुष होते हैं, एक तो वे कभी अपनी बड़ाई नहीं करते, एक उनके बीच के मां स्वार्थ नहीं रहता, वे स्वार्थ से पार हो गए हैं। एक उनके बीच के मां समभाव आ जाता है, सबको समान भाव से देखते हैं। तो समता जो है और स्वार्थ का जो त्याग है और मान बड़ाई प्रतिष्ठा से जो रहित है और उत्तम गुण और उत्तम आचरण होते हुए जो एक प्रकार से उनके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, ऐसे जो पुरुष है उनके वहां कोई समझो कि महापुरुष मिलता है। तो बोलो हमको कैसे पता लगे कि सबको ये समभाव से देखता है, इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, ये वास्तव में कंचन काम निका त्यागी है, मान बड़ा एक प्रतिष्ठा को ये नहीं चाहता है, इत्यादि जो बात आपने जो बतलाई इसका हम निर्णय कैसे करें। बोले जितनी दूर तक आप कर सकते ये लक्षण उनके बीच के मां समझने चाहिए। बोले ठीक है, कोई सरल रास्ता हमको बतलाओ जिससे एक प्रकार से हम उसकी पहचान कर सकें। तो आपको सरल रास्ता बतलाया जाता है, अपने ऊपर उनका कैसा प्रभाव पड़ता है ये तो आप समझ सकते हैं कि अपने ऊपर उनका कैसा प्रभाव पड़ता है। बहुत संत महात्माओं से, गृहस्थियों से, भगवान के भक्तों से, ज्ञानियों से आप मिलते हैं, तो जिसके दर्शन से, भाषण से, वार्तालाप से, सफर से आदि से और चिंतन से उसके पास निकट बात करने से हमारे में देवी संपदा के लक्षण आवे, वो उस कोटि का साधक है और वो देवी संपदा को प्राप्त हुआ सूर्यों की महात्मा है। साधक को भी महात्मा, उस कोटि के साधक को भी गीता में महात्मा माने गए। और जिनके संग करने से हमारे में आसुरी संपदा के लक्षण आवे, झूठ कपट चोरी बेईमानी आदि या काम क्रोध लोभ मोह आदि दुर्गुण ये आने लगे तो समझना चाहिए कि ये आसुरी संपदा वाला पुरुष। और जिसके संग से थी जो महापुरुष हुए हैं, महात्मा पुरुष जो पूर्व के जमाने में हुए हैं और गीता में जिनके लक्षण महापुरुषों के जो लिखे हैं, मैंने जो गीता के श्लोकों की संख्या से संकेत किया, इनका भाव अपने में घटने लगे जिनके दर्शन से, वार्तालाप से और निकट बात करने से उनका साथ में माने दर्शन भाषण सफर से वार्तालाप चिंतन और निकट निवास करने से अपने में महापुरुषों के लक्षण आने लगे, तो ये समझना चाहिए कि ये महापुरुष है। इस पर एक कहानी है, बीकानेर के जो महाराज साहब हैं, जो ये पहले की बात है, बीकानेर के बहुत से महाराज साहब हुए, तो उस महाराज साहब ने